आज जो हमारा विषय है वो है बायोलॉजी और हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग एवं संरक्षण। और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट मिस नीलम गुप्ता जी। नीलम मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ।
थैंक यू। आज हम मॉड्यूल 4 जो है एनवायरमेंट एंड हेल्थ का जो लेसन नंबर 25 है कंजर्वेशन ऑफ एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग और संरक्षण कैसे किया जाए टॉपिक ले रहे हैं। वो ले रहे हैं बायोडायवर्सिटी, उसका इम्पोर्टेंस बात पर बात करेंगे और कुछ केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे। थ्रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या है और साथ ही कोशिश करेंगे हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में और उनका कंजर्वेशन करने की क्यों जरूरत है और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं और कौन सी संस्थाएं हैं जो इसमें भागीदारी करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, कौन सी एजेंसीज हैं और इंडिया में कौन कौन किस तरह से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की प्रोसेस चल रहे हैं, प्रक्रिया चलती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या है? जो चीजें हम अपने चारों ओर देखते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे एनिमल देखते हैं, पौधों में ग्रीन ग्रास से लेकर एक बहुत विशाल वृक्ष भी देखते हैं, बहुत सारी वैरायटी के हम एनिमल्स देखते हैं, छोटे इंसेक्ट भी देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखते हैं और ह्यूमन बीइंग और दूसरे बड़े जानवर भी हम इसमें देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, अपने जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं वो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, कुछ को तो हम आंखों से देख सकते हैं, कुछ को हम आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। और इस तरह की जो बायोडायवर्सिटी है, इस तरह की जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं जो कि एक मिलकर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी या बायोडायवर्सिटी उस आपके सराउंडिंग की बनाती नहीं, उस रीजन की बनाती। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि बायोडायवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज ए फ्लोरा एंड फौना मीन्स वेरियस ऑल प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स ऑफ ए रीजन, यानी किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें उसमें बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ पाए जाते हैं, वो ही उसकी बायोडायवर्सिटी कहलाती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बायोडायवर्सिटी की, कि सबसे पहला तो ये इकोसिस्टम को मेंटेनेंस करती है। ये मेंटेन करती है हमारी गैशियस कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफियर जो कि हमारे उसमें जो एटमोसफियर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और भी इनर्ट गैसेस हैं जो बहुत कम मात्रा में हैं लेकिन उनका एक अपना स्थान है, उसी से कंपोजिशन बनता है, उसको करती हैं। क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं, आपका नेचुरल पेस्ट कंट्रोल में मदद करती है, पॉलिनेशन प्लांट्स में मदद करती है। कैसे? क्योंकि जो एनिमल्स हैं और कुछ इंसेक्ट हैं, बर्ड हैं, वो पौधे के जो परागण हैं उसको एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक भेजती हैं और परागण की क्रिया को संपन्न करती हैं। सॉइल के निर्माण में हेल्प करते हैं, कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं और वाटर प्योरिफिकेशन एंड कंजर्वेशन में भी मदद करते हैं। और जो हमारी बायो जियो केमिकल साइकिल है यानी कार्बन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, वाटर साइकिल है, उसको भी सुचारू रूप से चलाने में जरूरत होता है। तो हम और भी तरह से यूज करते हैं और कुछ इस तरह से बैठे हैं कि फूड यानी सभी तरह के जो फूड हैं वो हमें मिलते हैं पौधे और जंतुओं से। ड्रग्स और मेडिसिन भी कम से कम 25% जैसे ड्रग हैं जो कि हमें प्लांट्स से मिलते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो क्विनैन है, उसको हम मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये है एक प्लांट से मिलता है और जिसका नाम है सिंकोना ऑफ्सिनेलिस। ऑल एंटीबायोटिक्स को अगर हम देखें तो वो मोस्टली प्लांट से ही, और मतलब प्लांट से या फिर माइक्रोब से यानी सूक्ष्म जीवों से ही डिराइव की जाती हैं। और बायोडायवर्सिटी का कल्चरल और एथिकल वैल्यूज भी, एस्थेटिक वैल्यूज भी होती हैं, क्योंकि आपको अगर कहीं किसी परिवेश में आप जा रहे हैं और आप वहाँ बहुत सारी बटरफ्लाई देखते हैं, कुछ एनिमल्स देखते हैं, कलर्ड बर्ड्स देख रहे हैं या फिर फ्लावर्स देखते हैं, फ्लावर्स की बहुत बड़ी वैरायटी होती है, तो वो आपको आपके मन को सुकून भी देती है, आपको बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर। और ये जो इको टूरिज्म है वो पर्यटन का भी एक मतलब पर्यटन है, तो हम कहीं वहां जब विजिट करने जाते हैं तो वो किसी के लिए इनकम का जनरेशन का भी एक साधन देता है। रिलीजियस वैल्यूज भी हैं, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि हम लोग कुछ जैसे तुलसी हो गया, आपका पीपल हो गया, बनियान ट्री है, उसको हम पायस यानी पवित्र ट्री मानते हैं, पूजा करते हैं इनकी। उसी तरह से हम एनिमल्स को भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, जैसे काओ हो गई, ऑक्स है, एलिफेंट है, लायन है, क्योंकि ये किसी ना किसी डेटी के नहीं देवता के वाहन भी हैं और दूसरे ये इंडेंजर्ड स्पीशीज भी हैं, इनको कंजर्व करने के लिए भी हम करते हैं। तो एक और है कि पहले हमने बात की कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम भी है, और ये रिक्वायर्ड है फॉर डिस्पोजल एंड पॉलिनेशन इन प्लांट्स, फॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड प्यूरिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए। अब हॉटस्पॉट की बात करते हैं, तो हॉटस्पॉट क्या है कि दुनिया में हर जगह पेड़ पौधे नहीं होते हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पृथ्वी पर जियोलॉजिकल रीजन्स का वो अनइवन है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं बहुत वास्ट ग्रासलैंड होगा, कहीं एकदम पहाड़ होते हैं, कहीं बर्फ से ढके होते हैं, कहीं समुद्र है, कहीं नदियां हैं, मतलब कि हर जगह एक चीज नहीं है। तो इसीलिए कुछ रीजन्स जो हैं वो बहुत रिच हैं, उसमें फ्लोरा एंड फौना बहुत है, बहुत तरह के जंतु मिलते हैं, और कहीं कहीं बैरन लैंड है, यानी दूर दूर तक आपको कहीं कोई वेजिटेशन या कोई एनिमल नहीं उसमें दिखाई देता है। तो ऐसे को हम कहते हैं उन एरियाज को जहाँ बहुत ज़्यादा डायवर्सिटी होती है, उसे हम बोलते हैं मेगा डायवर्सिटी जोन, और इसको हम हॉट स्पॉट भी कहते हैं। जैसे इंडिया के पास में 2.4 जो भूमि का हिस्सा है दुनिया का, वो 2.4 है, और ये जो है 8% करीबन बायोडायवर्सिटी ग्लोबल डायवर्सिटी में हम कंट्रीब्यूट करता है, यानी इंडिया में इतनी बायोडायवर्सिटी है जो कि पूरे दुनिया की बायोडायवर्सिटी में 8% का कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो हॉट स्पॉट्स जो हैं वो आर रिचेस्ट एंड द मोस्ट थ्रेटन रिजर्वॉयर्स ऑफ बायोडायवर्सिटी ऑन द अर्थ, और ये जो क्राइटेरिया है वो कैसे डिटरमिन करते हैं कि उसको हम हॉट स्पॉट कहते हैं जिस एरिया में 1500 से ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हैं और कम से कम उसका जो लॉस्ट कवर है वो 70% ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट होता है। तो सारी दुनिया में अगर बात करते हैं तो 25 हॉट स्पॉट्स हैं, और ये हॉट स्पॉट्स आर करेक्टराइज बाय सपोर्टिंग एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है इसमें, और इनमें से दो जो हैं हॉट स्पॉट्स वो इंडिया में हैं और उनके नाम है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय, और ये दोनों एरिया ही जो कंट्री में बहुत ही रिच हैं बायोडाइवर्सिटी के मामले में, और इसमें फ्लावरिंग प्लांट हो गया, आपका रेप्टाइल हो गया, एम्फीबियंस हो गया, बटरफ्लाइज हो गए, और बहुत सारे मैमल्स की स्पीशीज भी इन्हीं एरिया में मिलती हैं। ये हॉटस्पॉट में जो फ्लोरा और फोना पाया जाता है उसमें से बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ इधर ही मिलती हैं, बाकी आप अगर पूरे इंडिया में देखें तो उनकी वो वेराइटीज इसमें नहीं मिलती हैं। और जो ईस्टर्न हिमालय है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और भूटान तक फैला हुआ है, और टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1700 टू 3500 मीटर पर, और बहुत सारी डीप और सेमी सॉलिड वैलीज हैं जो कि एक्सेप्शनली रिच है इन प्लांट स्पीशीज के लिए। अब हम बात कुछ केस स्टडीज पर बात करते हैं, तो पहली केस स्टडी हम लेते हैं राजस्थान से ही हैं दोनों। पहली हम बात करते हैं कि बहुत जब हम ये केस स्टडीज कैसे लेते हैं कि बहुत सारे लोगों को कुछ सोसाइटी को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं एरिया में, और उस वो इतनी कठिन होती हैं कि जिसको दूर करने के लिए कुछ सोल्यूशन ढूंढे जाते हैं, और इसीलिए हम बात कर रहे हैं वो केस स्टडीज की। पहली केस स्टडीज राजस्थान से है, क्योंकि राजस्थान का मालूम है कि बहुत डेजर्ट एरिया है, वहाँ पानी नहीं होता है, पानी की कमी होती है, और इसके कमी को दूर करने के लिए जो राजेंद्र सिंह थे, एक सोशल वर्कर थे जो कि महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के फॉलोअर थे, उनके आदर्शों को लेकर चलते थे, तो उन्होंने जब उनके मन में आया कि उन्हें कुछ ऐसा करना है उनसे इंस्पिरेशन लेकर, तो उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी और वो लोगों की हेल्प करने के लिए राजस्थान में की तरफ चले गए थे, और उन्होंने उनके गांव वालों की मदद से वहां पर जोहाड़, जिसे कि कहते हैं डग आउट पॉन्ड, जो कि वाटर कंजर्वेशन का एक स्ट्रक्चर है, जहां पर कि जब बारिश आती है तो बारिश का पानी उसमें एकत्र हो जाता है, और एकत्र होना जब शुरू हुआ तो धीरे धीरे करके साल दर साल उसमें वृद्धि हुई, और वहां पर खेती को काफी मदद मिली, और कम से कम 3500 लोगों द्वारा बनाए गए वाटर कंजर्वेशन जोहार उस एरिया में है राजस्थान के, जहां पर कि पानी नहीं होता था और आज वहां पानी की कमी नहीं है। दूसरी केस स्टडी जो ली गई थी वो गांधीग्राम यानी गुजरात से थी, और कुछ डिस्ट्रिक्ट से थी। ये वहां पर जो गांव वाले थे, ग्रामीण थे, वो 10-12 साल से इस वाटर क्राइसिस को झेल रहे थे, और ग्राउंड वाटर का जो भूमिगत जो जल का तालिका थी वो भी नीचे जा चुकी थी काफी, और जो सी लेवल, क्योंकि कच्छ का एरिया तो समुद्री एरिया हो गया, तो वहां उससे क्या ज्यादा मात्रा में पानी जब निकाला तो नीचे से जब और पानी आने लगा तो वो उखारा, क्योंकि सी वाटर उस लेवल में मिल गया, मिक्स हो गया था। तो इसीलिए गांव वालों की मदद से यूनिवर्सिटी में ये हुआ था, यूनिवर्सिटी जो है वहां की उन्होंने भी हेल्प की थी इसमें, और जो गांव वालों की मदद से एक ग्राम विकास मंडल का निर्माण किया गया, बनाया गया था, और इस मंडल ने बैंक से लोन लिया और गांव वालों ने अपना वॉलंटरी श्रमदान किया, लेबर अब खुद उनका था, और वहां पर उन्होंने चेक डैम बनाए जहां नियर बाई जो नदी बहती थी उसके पास में, विश फ्लोट पास तो पहले गांव से बहती थी लेकिन बाद में वो उस गांव में इस प्रोजेक्ट से यानी जो डैम बनाया, चेक डैम बनाया, उससे वहां पर पानी की जो कमी पहले वो लोग गांव वाले महसूस कर रहे थे, फेस करते थे, अब उनको पर्याप्त मात्रा में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिल पा रहा था, वो भी उनके अपने ही श्रमदान से और बैंक के द्वारा की गई सहायता से। तीसरी स्टोरी है राजस्थान की ही, और वहां भी उन्होंने वाटर कंजर्वेशन की बात की थी, जो बहुत कम जहां उस एरिया में जहां पर कि बहुत कम वर्षा होती थी, और 1980 की पर वो जो नदी थी उसका लेवल बहुत ही खत्म हो गया था, क्योंकि बहुत सारे पेड़ डिफोरेस्टेशन के लिए और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज यानी वो जंगल काट काट के जो वेजिटेशन है उसको हटा के वहां पर कृषि के करने लगे थे, लेकिन लोकल पीपल्स के गाइडेंस में वहां की महिलाओं ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने भी कुछ पॉन्ड्स और डैम बनाए ताकि वर्षा के पानी को रोका जा सके, और धीरे धीरे वो मेथड इतना इफेक्टिव हुआ कि जो कंजर्विंग और वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का और वाटर कंजर्वेशन का लोगों को समझ में आया, और आज वहां पर वो बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका पानी का जो डैम है या चेक डैम बनाए या पॉन्ड बनाए वो बारिश में भर जाते हैं और उन्हें हमेशा पानी मिलता रहता है। अब बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या थ्रेट हो सकती है कि कैसे बायोडाइवर्सिटी खतरे में है, तो कई सारे कारण हैं। एक तो हमने पेड़ों को काट दिया, डिस्ट्रक्शन पेड़ों को जब काट दिया, जंगल हटाए तो हमने बहुत सारे वन्य जीवों का उनका आवास खत्म कर दिया, जो वेटलैंड थे, दलदल थे, उनको हमने भर के अपने एक्टिविटी ह्यूमन ने इंडस्ट्रीज लगा दी या रिहाइश के लिए ले लिया, जो जंगल थे उनको समतल करके हम खेती करने लगे, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई, उसकी डिमांड थी फूड और शेल्टर की, जिसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया कि सिंगल एक खेत, पहले क्या होता था कि मल्टीपल क्रॉपिंग होता था, आज एक फसल, दूसरा कुछ महीने बाद दूसरी फसल, ऐसे वो एक तो साइकिल चलता रहा और क्रॉप रोटेशन होता रहा ताकि भूमि में जो न्यूट्रिएंट हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो बरकरार रहें। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या का भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने सिंगल क्रॉप उस पर की, ताकि जो एक फसल के लिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट है वो सारे खत्म का हो गए, तो उससे क्या हुआ कि उसका नतीजा ये रहा कि एक क्रॉप से तो हमने काम चलाया, बाकी हमारी जो क्रॉप थी वो खत्म हो गई, अदृश्य हो गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, औद्योगिकीकरण के कारण भी काफी चेंज आया और हमने बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट प्लांट और एनिमल के खत्म कर दिए हैं। पॉल्यूशन देखें हम, वायु का है, जल का है और सॉइल का है, उसने भी हमारी हैबिटेट क्वालिटी पर असर डाला है और वो भी रिड्यूस हो गई है, और कुछ स्पीशीज उसमें इतनी सेंसिटिव थी कि वो शायद नष्ट होने के कगार पे भी आ गई। माइनिंग एक्टिविटीज ने भी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को बढ़ाया, और जो थ्रेटन एनिमल थे उसके उस एरिया के नियर बाई रहने वाले उनकी भी लाइफ आज खतरे में पड़ गई। जैसे डैम है, रोड है, रेलवे है, इसमें भी क्या होता है, हम बहुत बड़े एरिया, फॉरेस्ट एरिया को ख़त्म कर देते हैं कंस्ट्रक्ट, जब हम उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये इससे भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब होती है। और इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस एज रिजल्ट इन देयर रिडक्शन, क्योंकि आपने देखा होगा कि टाइगर है या एलिफेंट को, टाइगर को उसके स्किन के लिए, और फर जो एलिफेंट है उसको उसके आइबनी यानी टीथ के लिए हम लेते हैं, तो ये भी एक मुश्किल है उन प्रजातियों को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए। और कई बार क्या होता है कि ना कोई ऐसी स्पीशीज, एग्जॉटिक स्पीशीज या फॉरेन स्पीशीज उस एरिया में ग्रो करने लग जाती है, जो कि जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज है उनके लाइफ को यानी उनके ओरिजिन को, सर्वाइवल को ही खतरा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि नदियों में या तालाबों में, आपने देखा होगा नहरों में भी आप देख सकते हैं, ग्रीन वेजिटेशन जो कि वाटर हायसिंथ यानी जलकुंभी होती है, वो क्या करती है कि बाकी एक्वाटिक स्पीशीज को ख़त्म कर देती है, और ये हमारे यहाँ बहुत सारी एक्वाटिक स्पीशीज को ख़त्म करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और इसका पानी भी पीने योग्य नहीं रहता है क्योंकि वो खराब हो जाता है। हम कंजर्वेशन कैसे करते हैं, हम दो तरह से कंजर्वेशन करते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू मतलब ऑन साइट, यानी कि जहाँ पर जो प्लांट है या जो एनिमल है वो जिस नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं उसको ही हम प्रोटेक्टेड एरिया बना देते हैं, ताकि वो अपने उसी परिवेश में फ्लरिश हो सके। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं ताकि आम लोगों का उसमें इंटरफेरेंस ना रहे। तो कह सकते हैं कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज आर एरियाज ऑफ लैंड और सी, कुछ भी हो सकता है, डेडिकेटेड टू प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी उस क्षेत्र के लिए, उस एरिया के लिए। जैसे इसका हम कैसे कर सकते हैं, कुछ नेचुरल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बनाकर, बायोस्फीयर रिजर्व बनाकर हम इस तरह से इन सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं। उसी तरह से हम एक्स सीटू मतलब कि जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं बॉटनिकल गार्डन्स को, जीन बैंक हो गया, डीएनए बैंक है, सीड बैंक है, पोलन बैंक है, सीडलिंग एंड टिश्यू कल्चर है। इस पर हम बात करते हैं कि एक्सिटू में इस तरह से हम कंजर्वेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं इनडेंजर्ड स्पीशीज की। हमने बात की कि कहीं कहीं कुछ प्रजातियां नष्ट हो गई हैं या विलुप्त नष्टता के कगार पर हैं, तो उसे हम कहते हैं इनडेंजर्ड स्पीशीज का। कैसे कि हमें मालूम है कि हमने जंगल काटे तो बहुत सारे एनिमल का और प्लांट्स का, माइक्रोब्स का, बटरफ्लाई या जो भी इंसेक्ट है उनके हमने हैबिटेट उनसे छीन लिए। उससे क्या हुआ कि हमारी जो बायोडायवर्सिटी है वो कांस्टेंट थ्रेट पर है। और इसको कैसे कहते हैं कि अगर कोई स्पीशीज पहले दिखती थी, पहले इस पृथ्वी पर थी, लेकिन आज वो दिखाई नहीं पड़ती है और फिर कभी शायद फ्यूचर में भी वो ना मिले, तो उसे हम कैटेगरी में रखते हैं एक्सटिंक्ट का। मींस कि द स्पीशीज विच हैव ऑलरेडी डिसअपीयर्ड उसे हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। और इस फिनोमिना को, जो अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का जो फिनोमिना है, उसे हम एक्सटिंक्शन या विलोपन के, इसका एग्जांपल आप डायनासोर का ले सकते हैं, जो जुरासिक पार्क मूवी में दिखाया गया था डायनासोर उसका। और उसी तरह से एक दूसरी कैटेगरी है, वो है इंडेंजर्ड स्पीशीज। वो क्या होते हैं कि वो या तो बहुत कम नंबर में हो गए हैं और शायद इतने कम नंबर हैं उनके कि इन फ्यूचर वो एक्सटिंक्शन के बिल्कुल कगार पर हैं, तो ऐसी स्पीशीज को हम रखते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज में। जैसे बहुत कुछ समय पहले अगर बात करें तो टाइगर हमारे यहाँ खत्म होने के कगार पर थे, बहुत कम टाइगर रह गए थे, लेकिन आज जब टाइगर रिजर्व बनाए गए, उनका थोड़ा सा शिकार कम किया जा रहा है, तो उससे उनकी संख्या बढ़ी। और इसमें कुछ संस्थाएं भी जो IUCN है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जिसको पहले बोला जाता था, IUCN ने कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की ऐसी प्रजातियां जो कि इंडेंजर्ड हैं, विलुप्तता के गगार पर हैं, उनको लिस्टेड किया है और इसको हम कहते हैं रेड डाटा बुक। इसमें कुछ स्पीशीज हैं जैसे एनिमल्स की, एशियाटिक लायन हो गया, ग्रीन सी टर्टल है, लोगर है, टर्टल है, टूटॉइज है, मार्श क्रोकोडाइल एंड घरियाल हो गए, टाइगर है, राइनोज हैं, एशियन एलिफेंट हैं, इंडियन पाइथन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और बटरफ्लाइज, ये शामिल हैं। उसी तरह से प्लांट्स भी इंडेंजर्ड स्पीशीज में हैं इस लिस्ट में, वो हैं पिचर प्लांट हो गया, इंडियन बेलाडोना है, ऑर्किड्स है, नीलगिरी लिली है, जिंगो बाइलोबा भी इसमें शामिल है। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, कि वाइल्ड लाइफ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि हमने एनिमल की अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो बोलते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल, पेट एनिमल और वाइल्ड एनिमल्स। तो डोमेस्टिकेटेड कौन से, जिनको कि हम घर आसपास में देखते हैं, घरों में पाल लेते हैं, यानी कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, कुछ लोग गाय भैंस भी पालते हैं, शीप भी पालते हैं, और गार्डन में भी हम बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल, लेकिन सारे प्लांट्स एंड एनिमल हम अपने आसपास में तो नहीं देखते हैं। तो ऐसे भी कुछ हैं जिनको कि, और कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिन्हें कि आप अपने उगा नहीं सकते हैं अपने, और ऐसे जानवर भी हैं जिन्हें आप अपने घरों में नहीं रह सकते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, जंगल में ही रहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, कि प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अदर देन कल्टिवेटेड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट वाइल्ड लाइफ। अब एनिमल एंड प्लांट जो हैं वो रहते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वाइल्ड लाइफ को, और वाइल्ड लाइफ जो है इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि प्ले करता है एक मेजर रोल फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए, और इट इज़ यूज इन रिसर्च एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल एंड ऑल्सो यूज फॉर रिक्रिएशनल पर्पजेज। सो कैसे करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मेंटेन, क्यों ज़रूरत है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर सपोर्टिंग लाइफ, प्रिजर्विंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज, प्रिजर्विंग इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड कंजर्विंग इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब इसको किस कौन से मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं, तो कंजर्वेशन जब पता लगा कि आवश्यकता है तो कैसे कर सकते हैं, हमने अडॉप्ट किए कुछ मीन्स, यानी कुछ भी तरीके, जैसे कि हमने एस्टैब्लिश किए बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, एफॉरेस्टेशन यानी ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम लगाए हमने, स्पीशीज स्कीम, स्पेशल स्कीम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज और इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। साथ ही हमने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया ये समझाने के लिए कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की आवश्यकता है और हम किन विधियों से इसका कंजर्वेशन कर सकते हैं, और फॉर्मुलेशन ऑफ एक्ट एंड रेगुलेशंस टू प्रिवेंट पोचिंग यानी शिकार करने के, जो जानवरों को मारने के लिए फॉर स्पोर्ट, अपने मनोरंजन के लिए या फिर ट्रेड के लिए, मनी के लिए, पैसे के लिए। और इसीलिए 1955 से हर साल जुलाई में हम वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं, और इसका एम होता है कि हम लोगों को जागरूक करें वाइल्ड लाइफ और उनके इम्पोर्टेंस के लिए और कंजर्वेशनल एंड मैनेजमेंट नीड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स इन इंडिया में कौन कौन से हैं, तो नेशनल पार्क हैं बहुत सारे और बहुत सारी हमारी सेंचुरीज हैं, इनमें से हम कुछ ही का नाम ले गए, बहुत लिस्ट लंबी है तो हम थोड़े से ही बात करेंगे, तो जो इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ जो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो हमने बात की कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में भी शामिल हो रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम वन हॉर्न राइनोज, जो कि कांजीरंगा सेंचुरी असम में है, वहाँ पर है। मानस सेंचुरी असम में ही है, जिसमें कि कंजर्वेशन के लिए है वाइल्ड बफेलोज का। गिर फॉरेस्ट में लायंस का है, चीतल है, सांबर है, वाइल्ड बियर्स है। कैलामेरू बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, जिसमें पेलिकन एंड मैरीन बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दचीगम सेंचुरी जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसमें कश्मीरी स्टैग, हिमालयन तहार, वाइल्ड गोट, शीप, एंटीलोप्स को है। बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटका में है, जिसमें इंडियन बायसन, एलिफेंट एंड लैंगूर्स है। पेरियार सेंचुरी केरला में है, जो कि स्पेशली कंजर्व कर रहे हैं ये एलिफेंट, बार्किंग डियर एंड सांबर को। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, टाइगर रिजर्व है और लेपर्ड और वाइल्ड डॉग को भी शामिल करते हैं इसमें। सिमलीपुर पाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है, मैंग्रोव मैरीन टर्टल एंड ले एग्स। भरतपुर बर्ड सेंचुरी बर्ड्स के लिए है, स्पेशली डक्स एंड हेरन्स के लिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसमें टाइगर, बार्किंग डियर जो कि उत्तरांचल में है, सांबर, वाइल्ड बियर, रिसस मंकी एंड जलतपारा सेंचुरी जो कि वेस्ट बंगाल में राइनोस के लिए है। अब बात करते हैं उन एजेंसीज की जो कि कंजर्वेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वो भारतीय और इंडियन और इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सी हैं। भारतीय है, उस पर अगर इंडियन की बात करते हैं तो इंडियन बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ IBWL है, जो एडवाइस देता है स्टेट गवर्नमेंट को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को शामिल किया गया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इट इज एंगेज्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और इसमें इंडिया 1969 में मेंबर बना था और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में जो है वो मुंबई में है और इट इज सपोर्टेड वेल नोन टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर को इन्होंने सपोर्ट किया है। अब हम बात करते हैं IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स इज एंगेज इन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स। अब बात करते हैं अगली जो एजेंसी है वो है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू चेक ट्रेड प्रोडक्ट्स फॉर एंडेंजर्ड एनिमल। इंडिया इसका जो मेंबर बना है वो 1976 में बना है। हमारे यहाँ कुछ लेजिस्लेशन में भी है, कुछ कानून भी है, कुछ एक्ट्स हैं और लॉज हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जिसे कि अमेंड किया था 1991 में। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हमें अपना डेवलपमेंट करने के लिए हमने इंडस्ट्रीज लगाए, हमने रेलवे ट्रैक बनाए, सिटीज का टाउन, रोड, रेल, डैम, बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन इसमें हमने क्या किया कि हमने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर दिया और ये सब हमने जो प्लांट और एनिमल्स थे उनके हैबिटेट्स को ले लिया। अब क्या हुआ कि नेचुरल रिसोर्सेज हमने इतने ज्यादा एग्जॉस्ट कर लिए कि धीरे धीरे वो डिप्लीशन की स्थिति में आ गए। अब वो ग्रेजुअली और कुछ तो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो शायद हमारी फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिल पाए, तो इसीलिए अब ये सोचा गया कि इसको मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को मेंटेन कैसे करें ताकि हम फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों ही जनरेशन को उसका बेनिफिट दे पाए। और ये कैसे अचीव कर सकते थे, खाली प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उस पर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन एंड कंजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहेंसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज स्पेशली बायो रिसोर्सेज, प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड ग्रीन ग्रासी पैचेस टू बी इंटरस्पर्स्ड बिटवीन कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स, यूज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज विच इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड बेस्ड ऑन एफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये बात हुई कि हम अपना विकास करें लेकिन उस कॉस्ट पर नहीं कि जिसमें कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा एग्जॉस्ट कर दें और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना बचे। हमें अपना विकास उस तरह से करना है ताकि जो रिसोर्सेज कुछ रिसोर्सेज हम आगे वाली जनरेशन के लिए भी रख पाएं। अब हम बात करते हैं, हमने वाटर सॉइल रिसोर्स की बात कर ली थी अपने पिछले प्रोग्राम में, अब हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। तो एनर्जी तो जिंदगी का एक हिस्सा है और हम हर दिन बहुत तरीके से जो भी काम करते हैं उसमें हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जैसे कुकिंग हो गया, हीटिंग हो गया, प्लोइंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लाइटिंग हो गया, जिसमें क्या होता है कि हम को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर सपोज हम कुकिंग कर रहे हैं तो हीट एनर्जी चाहिए, वो रिक्वायर्ड होती है कुकिंग के लिए, जो हमें मिलती है फायरवुड से, केरोसिन ऑयल हो गया, LPG गैस हो गया, कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है. और हम एनिमल पावर को भी यूज करते हैं, जैसे बुलक का हो गया, हॉर्स हो गया, जिसको कि हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, और फॉर रनिंग मिरर माइनर मैकेनिकल डिवाइसेस जैसे पर्शियन व्हील यानी रहट चलाने के लिए, फॉर इरिगेशन के लिए, और रनिंग ए कोलू फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम ऑयल सीड्स. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. तो कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो इसमें भी दो तरह के सोर्सेज हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. कन्वेंशनल सोर्सेज कौन सी हो गई? जो कि इजीली अवेलेबल है और हैव बीन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, हमारे पास इतना सारा है कि हम बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या हो गई कि अभी है और हो सकता है कि ज्यादा चलन में नहीं है, और दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इट इन कॉमन प्रैक्टिस, जो आज चल रही है उस हिसाब से नहीं है, कुछ अलग है. तो हम किस तरह से इनको डिवाइड करते हैं कि कन्वेंशनल एनर्जी जो सोर्सेज हैं, एनर्जी के सोर्सेज दो तरह की हो गई, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल सोर्सेज में ये कन्वेंशनल सोर्सेज भी दो तरह की होती हैं, कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होती हैं और कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल कौन सी होगी? कन्वेंशनल जो कि फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे बहुत सारे जो भी हैं, वो कि जो कि जमीन के अंदर हैं. जमीन के अंदर कौन कौन से हैं? ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस. और जो कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो मोस्टली नॉन फॉसिल फ्यूल हैं, जो कि अबव द ग्राउंड हैं, जैसे हमारी फायरवुड हो गई, कैटल डंग हो गया, फार्म वेजिटेबल वेस्ट हो गए, वुड हो गया, चाकोल, ये. और नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो होती हैं हमारी कन्वेंशनल, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल की हमने बात कर ली. अब हम करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन सी? सोलर हो गई, टाइडल हो गई, हाइडल हो गई, विंड हो गई, न्यूक्लियर हो गई, हाइड्रोजन हो गई, जियोथर्मल हो गया, बायोगैस हो गया और बायोफ्यूल. तो हम बात करते हैं अब कन्वेंशनल में, जैसे हमने फॉसिल फ्यूल की बात की, कन्वेंशनल में वही आ रहे हैं. तो कोल बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉसिल फ्यूल है, और ये इसका जब हम यूज करते हैं तो कंबस्टन फन इन कुकिंग एंड इंडस्ट्रियल में करते हैं एक्टिविटीज के लिए. और बहुत सारे जो डिफरेंट कोल प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कोल गैस हो गया, कोल टायर हो गया, बेंजीन है, टोलिन, इसके डिफरेंट टाइप कोल प्रोडक्ट्स हैं जो कि वेरियस पर्पज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. ऑयल और नेचुरल गैस ये भी प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट से मिलते बनते हैं, और जो कि पहले इस पृथ्वी पर मौजूद थे, आज ये नहीं है, ये बरीड हो गए समुद्र के अंदर और ये ऑयल फॉर्म में आ गए. तो ऑयल इज द सोर्स ऑफ काउंटलेस प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल, डीजल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स. जैसे और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनमें और भी इंक्लूड किया जाते हैं, लुब्रिकेंट हो गया, वैक्स हो गया, सॉल्वेंट हैं, डाइज हैं, जो कि जब रिफाइन किए जाते हैं रिफाइनरी में तो उस समय ये बनते रहते हैं. और ऐसा माना जाता है कि जो पेट्रोलियम है वो अगले 100 सालों तक हमारे लिए उपलब्ध होगा और शायद बाद में वो नहीं मिलेगा. नेचुरल गैस ये भी पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है, और इसमें मेनली मीथेन होती है गैस, और ये भी बहुत तरह से सर्व करती है, फ्यूल तरह से यूज होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, और डोमेस्टिक में भी यूज करते हैं, घरेलू फ्यूल के रूप में भी यूज करते हैं हम. और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है इस नेचुरल गैस का. आज हम देखें तो बड़े बड़े शहरों में पाइपलाइन के थ्रू हम नेचुरल गैस को घरों में भेजते हैं ताकि कुकिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं, और व्हीकल्स के चलाने के लिए भी जो गैस इस्तेमाल की जा रही है वो नेचुरल गैस है, लेकिन वो कहलाती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG. और ये इकोनॉमिकली भी फायदेमंद है और लेस पोल्यूशन करती है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है. LPG की हमने बात करी कि कॉमन कुकिंग गैस है, इंडियन होम्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत चलन बढ़ गया है. और ये बेसिकली प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिक्सचर होता है, जिसको कि रखा जाता है अंडर प्रेशर इन लिक्विड फॉर्म, और ये जब जलती है तो गैसेस फॉर्म में जलती है, और ये अवेलेबल है इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूज के लिए. और ये जो गैस है वो मिलती है हमें रिफाइनरीज का जो बाई प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है उसी के उसमें. अब नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो पहला आता है हमारा सोलर एनर्जी, बहुत अबंडेंट है, काफ़ी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो फायर है, फायरवुड है, कोल है, ये सब भी जो प्रोडक्ट है वो प्लांट प्रोडक्ट है। और इसमें क्या होता है कि जो प्लांट प्रोडक्ट हैं वो फोटोसिंथेसिस के सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और आज इसके जो एडवांटेज है, अबंडेंट है, एवर लास्टिंग है, अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, और ये फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल बैरियर भी है। और कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर हॉट वाटर सिस्टम, सोलर पैनल, सोलर किचन, सोलर ड्रायर के फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी है हाइड्रल एनर्जी, जो जनरेशन ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हाइड्रल पावर कहते हैं। ये चीपर है थर्मल और न्यूक्लियर पावर से, और इसके जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, बिल्ड डैम का निर्माण करते हैं जिसमें पानी को स्टोर करते हैं, विच इज मेड टू फॉल टू रोटेट टर्बाइन, वो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विंड एनर्जी क्या है, विंड एज एन एनर्जी कैन बी यूटिलाइज इन आवर डेली लाइफ बाय कन्वर्टिंग इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और ये मैकेनिकल एनर्जी को यूज करते हैं जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। रेज इसमें कैसे होता है, रेज वाटर फ्रॉम वेल्स एंड रिवर्स फॉर इरीगेशन एंड अदर पर्पजेस। विंड मील जो है, पवन चक्र आपने देखे होंगे, वो बहुत समय पहले से ग्राइंडिंग के में इस्तेमाल किए जाते हैं एंशियंट टाइम में। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ग्रेन कटिंग एंड शेलिंग, और इंडिया में बहुत सारे विंड मिल हैं जो कि सी बीच या हिली एरिया में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है टाइडल एनर्जी, जो कि वन ऑफ द मेजर एक एनर्जी है, जो कि वाटर मूवमेंट, इट इज प्रोड्यूस बाय मेकिंग द यूज ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम हाई टाइड टू ए लो टाइड। ओशन वेव्स एंड टाइड्स कैन बी मेड टू टर्न ए टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी उन एरियाज में जहां नदी बह रही है, फ्लो इनटू द रिवर एक्सपीरियंस वेव्स एंड टाइड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। न्यूक्लियर एनर्जी, जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जैसे यूरेनियम और थोरियम, उनसे उनके डिसइंटीग्रेशन जो अणु है उनसे उनके द्वारा उसके डिसइंटीग्रेट करने के समय जब एनर्जी निकलती है उसके हमें ये न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। और हमारे यहाँ तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा, कोटा, इसमें ये न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन लगे हुए हैं। नेक्स्ट आती है हाइड्रोजन एनर्जी, जो कि प्राइमरी फ्यूल फॉर द हाइड्रोजन बेस्ड फॉसिल फ्यूल सेल्स के लिए और पावर प्लांट के लिए है, और पावर कैन बी जनरेटेड फॉर इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल एंड ट्रांसपोर्ट पर्पजेज बाय यूजिंग हाइड्रोजन। नेक्स्ट आती है जियोथर्मल एनर्जी, जो कि डिराइव्ड होती है हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये काफ़ी महंगी है और अभी इसका चलन ज़्यादा नहीं है। और अगली आती है बायोगैस। बायोगैस क्या है कि जो माइक्रोवेव एक्टिविटी है कैटल डंग, उसको एक स्पेशल टैंक में जैसे डाइजेस्टर कहते हैं उसमें इसमें वाटर और पानी का मिक्सचर मिलाकर तैयार करते हैं, और उससे जो हीट निकलती है उसको हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, फैमिली और कम्युनिटी टाइप हो सकते हैं। फैमिली के लिए तो स्मॉल होगा और कम्युनिटी के लिए है तो बड़ा होगा। उसी तरह से बायो डीजल फ्यूल की बात करते हैं तो बायो फ्यूल क्या होते हैं कि जो प्लांट्स है जैसे जट्रोपा कर्कस है वो बहुत सूटेबल है बायोडीजल के लिए। और उसी तरह से हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं एनर्जी, मिनिमम एक्सप्लोटेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, एम्फेसिस ऑन यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, स्टॉप वेस्टेज ऑफ एनर्जी, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट यंग पीपल रिगार्डिंग वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी, और मेक मोर यूज फॉर बायो मास बेस्ड एनर्जी। आज हमने कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बात किया इसके पार्ट टू पर, जिसमें बायोडाइवर्सिटी और एनर्जी के बारे में बात की, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात किया। अब हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।